शांति।
प्यारे बाबा की शिव शक्ति सेना, पांडव सेना बाबा के दरबार में आज उपस्थित हुई है। एक स्वामी वेद व्यासानंद जी थे, उन्होंने वे एक बार सेवा केंद्र में आए थे। शुरू में तो बहुत विरोधी थे और फिर विद्यालय के स्नेही बन गए। तो शहर की जनता ने उनसे पूछा कि आज आप ब्रह्मा कुमारी में क्यों गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हम शुरू में बहुत ही इनका विरोध करते रहे, लेकिन हमने देखा कि गुप्त ही गुप्त एक बहुत ही जबरदस्त नारियों की सेना इन्होंने तैयार कर ली, और इसलिए अब मैं समझता हूं कि हमें मिलके चलना चाहिए तो हम ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की सभा को देखकर सचमुच ऐसे ही लगता है कि देखते ही देखते प्यारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने और निमित्त हमारी दादियों ने कैसी एक शक्तिशाली सेना तैयार कर दी है। जो सेना वो कार्य कर रही है जो संसार में और कोई नहीं कर सकता है, और वो कार्य है कि अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए साधारण नाम रूपधारी प्रवृत्ति मार्ग के भाई बहनों को पवित्र और योगी बना देना, बाबा का ज्ञान देने के लिए हम बहने निमित्त बनती हैं। लेकिन अक्सर लोग जब ये कहते हैं कि भी आप तो समर्पित है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थी कैसे करेंगे, तो हम बहने भी आपको ही आगे करते हैं कि भाई इनको देखिए, चलो हम समर्पित है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इन गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को देखिए, वे भी तो हमारे जैसे ही पवित्र योगी बन रहे हैं। तो एक उदाहरण के रूप में आप सभी बाबा के बच्चे हैं कि जो सतत परिस्थितियों के बीच रहते हैं और फिर भी विजयी रहते हैं। विष्णु का जो चित्र दिखाते हैं कि सागर के बीच शेष सैया पर आराम से लेते हुए, वो आप सबका ही यादगार चित्र है कि संसार सागर की अनेक परिस्थितियों की लहरों के बीच, क्योंकि कितना भी कहो बाबा के घर में जो सुख सुविधाओं में हम रहते हैं और आप सभी लौकिक दुनिया के बीच रहते हैं, अंतर तो है ही, तो जहां संसार सागर की हर क्षण कोई ना कोई परिस्थिति रूपी लहरें उठती हैं और विषयी वाइब्रेशन लिए हुए लोगों के बीच रहते हैं आप, लेकिन मन बाबा में है, ज्ञान बुद्धि में है, लक्ष्य पक्का है, दृढ़ता है, तो कैसे हम आसानी से अपने जीवन को जी सकते हैं। और ये तभी संभव हुआ है जब हमारी बुद्धि में बाबा का सत्य ज्ञान है। अनेक जन्मों की भक्ति के फल स्वरूप अब बाबा हमें मिले हैं। जो हमारी भगवान के प्रति भावनाएं थी, श्रद्धा थी, और विशेष करके माताओं को भगवान के प्रति जो भावना है और श्रद्धा है वो इतनी होती है कि शायद हम समर्पित बहनों में भी नहीं है। इसी भावना का फल आज भी बाबा ने कहा कि मेजोरिटी माताओं की है और वो बात सही है। मेजोरिटी संगम युग में माताओं की क्यों है? क्योंकि भक्ति में भगवान के प्रति भावना रखने में भी मेजोरिटी माताएं ही है। भल धर्म के निमित्त भाई बन गए द्वापर से लेकर, इतिहास हम देखते हैं कि धर्म स्थापना के लिए निमित्त पुरुष बने, लेकिन धर्म की पालना करने में माताएं ही सदा आगे है। आज जहां कहीं भी कथा है, सत्संग है, व्रत है, त्योहार है, हर बात में माताएं ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर आस्था है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। भल समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, एकाग्रता है या नहीं है, लेकिन फिर भी भावना से जाना, समय देना और उसमें रुचि लेना, इसमें माताएं ही ज्यादा है। और यही कारण है इस भावना का फल ही अधिक माताओं को बाबा ने दिया। और इसलिए आज भी हम तो देखते हैं क्लास में मेजोरिटी माताओं की होती है। और एक बार जिस चीज को माताएं परख लेती हैं, निश्चय कर लेती हैं, उसको जीवन के अंत तक पकड़ के रखती है। ये उनकी समर्पणमयता है या उनकी दृढ़ता की शक्ति का परिचय देता है। तो ऐसी आप सभी माताएं यहां पर आई है मधुबन के बेहद घर में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी श्रद्धा और भावना का फल प्यारे बाबा इस दुनिया में आए हैं। पूरी सीजन में प्यारे बाबा ने हर मुरली के समय माताओं से, कुमारियों से, भाइयों से, टीचर्स बहनों के साथ बातचीत की है। और वो अगर आप सबको याद हो तो बाबा ने माताओं के साथ कितने प्यार से बात की है और माताओं की कितनी महानता दिखाई है वो आप सबको भी याद होगा। तो जब बाबा इतनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं और इतनी जिम्मेवारी देकर माताओं को निमित्त बनाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, तो मैं समझती हूं कि हम बहनों की और अधिक जिम्मेवारी हो जाती है कि अब तक तो हम भगवान में भावना रखते थे और भगवान हमें भावना का फल देते रहे हैं, लेकिन अब स्वयं भगवान हमारे में भावना रख रहे हैं, ऊंची आशा रख रहे हैं। तो हमें इतना ही सतर्क होना है कि हम भी उसका इतना ही रिटर्न कर दे और प्रैक्टिकली ये प्रूव कर दे कि भगवान ने जो भावना रखी है वो सही अर्थ में रखी है। उसके लिए अब हमें केवल भावना से नहीं, लेकिन पूरी समझ के साथ, निश्चय के साथ बाबा के ज्ञान मार्ग में चलना है। भावना भगवान से हमें जुड़ाकर रखती है, श्रद्धा हमें बल देती है, लेकिन ज्ञान की अगर समझ हमारे में गहरी है, विस्तार से है, तब हम हर परिस्थिति में समझ पूर्वक अपने रास्ते को तय कर सकते हैं और विजयी बनकर आगे चल सकते हैं। तो जब ये बुद्धि में हमें रहता है कि अनेक जन्मों की भक्ति का फल स्वयं भगवान आकर सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, हमें पुनः चढ़ती कला में ले जा रहे हैं, तो अब हमें कितना सेंसिबल बनकर चलना है और अपने आप को चढ़ती कला में ले जाना है। भक्ति में देखो हमारी भगवान के प्रति भावना है, श्रद्धा है, हमारी अपनी लगन है, इच्छा है भगवान को पाने की, एक तीव्र लगन अंदर होती है। और यही कारण है कि व्यक्ति पुरुषार्थ भी तीव्र करता है। कितने कष्ट सहते हैं, कितने व्रत नियमों का पालन करते हैं, पुरुषार्थ भी है, इच्छा भी तीव्र है, लेकिन भक्ति में सही ज्ञान नहीं है, सच्चा मार्गदर्शक नहीं है, सतगुरु नहीं है, इसलिए इच्छा होते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, केवल सही ज्ञान न होने के कारण हमारी चढ़ती कला नहीं होती है। अब हमारे पास सही ज्ञान है, अब हमारा भटकना समाप्त तो हो गया। न तन से भटकते हैं, न मन से भटकते हैं, क्योंकि यहां जो माताएं भाई पहुंचे हैं, मैं समझती हूं उनको इतना निश्चय स्पष्ट होगा कि अब स्वयं भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। भक्ति में जो सुनते थे वो अलग हैं, मनुष्य मत हैं, और अब जो हम सुनते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भगवान का ज्ञान है। अगर ये स्पष्टीकरण हमारी बुद्धि में है और हमें निश्चय है, तो दो रिजल्ट हमारे जीवन में जरूर दिखाई देंगे। एक रिजल्ट ये दिखाई देगा कि अब हमारा भटकना बंद हो जाएगा। पहले जो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक गुरु से दूसरे गुरु में, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में जो हम भटकते थे, वो हमारा भटकना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब सत्य प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य की उलझन समाप्त हो जाती है, मुंझना समाप्त हो जाता है, एक आंतरिक तृप्ति का अनुभव होता है और इसलिए भटकना समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट है कि हमें सर्वश्रेष्ठ भगवान का ज्ञान मिल रहा है, तो हमारी बुद्धि और कोई मनुष्य मत से भ्रमित नहीं है। चाहे वो मनुष्य मत कोई गुरु दे रहा है, कोई समाज वाले दे रहे हैं, या हम आपसी पुरुषार्थ में एक दो को कभी देते हैं, या कोई शंकर पार्टी या फलाना पार्टी के नाम से देते हैं, लेकिन वो मनुष्य मत हमें भ्रमित नहीं कर सकते, हमें चलित नहीं कर सकते, हमें ये स्पष्ट रहेगा कि भगवान ब्रह्मा के तन से और अब अव्यक्त बाप दादा के रूप में हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। तो प्रैक्टिकल अपने अपने जीवन में हम देख ले कि अगर अभी भी हमारा भटकना चल रहा है या हम मनुष्य मत के प्रभाव में आ जाते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमने सत्य ज्ञान को गहराई से समझा नहीं है। जो ज्ञान ना कोई मनुष्य दे सकता है, लेकिन ना कोई किताबों में हमें मिल सकता है। कई बार ज्ञान की गहराई न होने के कारण हम ये समझ बैठते हैं कि जो बाबा कहते हैं ना, ऐसा ही फलाना गुरु वहां कथा में कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने परखा नहीं है। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ही ज्ञान कोई मनुष्य दे सकता था तो संसार का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्यों लाखों का जीवन पवित्र नहीं बना? क्यों ये गाया हुआ है कि गुरुओं का भी उद्धार करने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ता है? अगर गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान भगवान आकर के रिपीट ही करने वाले हो तो भगवान को आने की जरूरत क्या है? अगर अब तक मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान अगर भगवान आकर दें तो उसको आने की जरूरत क्या है? वही ज्ञान वो क्यों रिपीट करे? आजीवन भक्ति में भी हम देखते हैं कि हर धर्म स्थापक संसार में आकर एक नई विचारधारा समाज के आगे रखता है। अब्राहम ने जो ज्ञान दिया उससे अलग गौतम बुद्ध ने ज्ञान दी, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया उससे अलग क्राइस्ट ने कहा, क्राइस्ट ने जो कहा उससे अलग मोहम्मद पैगंबर ने कहा। आज हर धर्म स्थापक भी आकर अपनी एक नई विचारधारा समाज के आगे रखता है, तो भगवान आकर इन मनुष्यात्माओं के और धर्मात्माओं के कहे हुए ज्ञान का ही रिपीटेशन क्यों करेगा? इसलिए हमें ये स्पष्टता हो कि बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, ना कहीं कोई किताबों में हमें मिल सकता है। इसलिए जो भी सारे मूल सत्य है वो केवल परमात्मा आकर के बताते। मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि योग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान विभिन्न योगी देते रहे, योग की विधि के बारे में, योग के बारे में अनेक योगियों ने ज्ञान दिया है, लेकिन आप मूल बात को अगर देखेंगे कि किसके साथ योग लगाना है वो कोई भी नहीं बता सकते। हर एक ने आखिर यही बताया है कि भाई अपने अपने इष्ट को याद करो, और यही कारण है एक ही संप्रदाय में जाने वाले, एक ही दुनिया की आध्यात्मिक संस्थाओं के मेंबर अपने अपने इष्ट को याद करने वाले मिलेंगे। क्योंकि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये सृष्टि चक्र क्या है, ये सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचना और रचयिता का ज्ञान सिवाय परमात्मा कोई नहीं दे सकता। इसलिए जीवन के और इस जगत के जितने भी मूल सनातन सत्य है वो केवल बाबा ही बता सकते। इसलिए आज भी बाबा ने कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम दूरांदेशी बने, दूर दूर का अंदेशा लगाने वाले, आलोक परलोक को जानने वाले और विशाल बुद्धि माना आदि मध्य अंत को जानने वाले, अगम और निगम के राज को जानने वाले बाबा ने हम बच्चों को बना दिया। और इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर के ज्ञान को तुम चिड़ियों ने हप कर लिए, क्योंकि शिव बाबा में जितना भी ज्ञान है वो सारे ही राज बाबा आकर के हम बच्चों को बताते। इसलिए भावना तो थी ही और ज्ञान स्पष्ट मिल गया तो योगी बनना हमारे लिए सहज। अगर सत्य ज्ञान है लेकिन भगवान में भावना नहीं है, समर्पण मयता नहीं है, तो भी योगी नहीं बन सकते। भावना है पर सत्य ज्ञान नहीं है तो भक्त बन सकते हैं, योगी नहीं बन सकते। तो आज बाबा के जो भी बच्चे हैं हम सभी के पास अब सत्य ज्ञान है। हम अनुभव करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान की गहराई हम प्राप्त करते हैं, रोज रोज बाबा की रूहानी पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम अनुभव करते हैं कि सचमुच जीवन का कोई राज ऐसा नहीं है जो हम ना जानते हो। छोटी छोटी बात से लेकर बड़े से बड़े सत्य बाबा ने हमें बता दिए हैं और वो भी इतनी सरल रीति से और सहज शब्द। आज भक्ति में जो ज्ञान है सत्य तो है नहीं लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मनुष्य समझ भी नहीं सकता। बाबा ने सहज भाषा में, सहज शब्दों में, सरल विधि से सारे ही मूल सत्य हमें बता दिए। तो जब सारा ही ज्ञान स्पष्ट है तो अनुभव हमारा ये है कि कोई बात जीवन में आई नहीं और हम उसको समझ लेते, कोई परिस्थिति आई नहीं और ज्ञान हमें जवाब दे देता। पहले हम जीवन के अंदर परिस्थिति आने पर, मुसीबत आने पर, कोई विघ्न आने पर, कष्ट आने पर हम खुद दुखी हो जाते थे, क्योंकि समझ तो थी नहीं, ज्ञान तो था नहीं, भगवान भगवान करते भी रहते थे और दुखी भी होते रहते थे, क्योंकि स्वयं को समझाने का ज्ञान नहीं था। और बिगर समझ कोई भी परिस्थिति को आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, जब तक कि उस बात को आप समझे नहीं। बाबा कहते हैं ना कई बार कि चलो भाई फुल स्टॉप लगा दो, बीती सो बीती कर दो, लेकिन वो बात बीती होती क्यों नहीं है, फुल स्टॉप लगता क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसको गहराई से समझते नहीं। जब समझ जाते हैं तो आप सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि भाई ये बात क्यों आई है मेरे साथ। तो अगर हम ज्ञान स्वरूप होकर जीवन के हर कदम में चलते हैं तो हमारे लिए मुंझने की कोई बात ही नहीं रहती। कितनी भी भारी परीक्षा आ जाए तो भी हमें तुरंत ज्ञान अंदर से समझ दे देता है कि ये बात तुम्हारे सामने क्यों आई और उसको कैसे पार कर। इसलिए बाबा ने कहा है कि यहां भी जब बाप के सामने बैठते हो तो ज्ञान स्वरूप होकर बैठ। आपने मुरली में ये नोट किया होगा बाबा का महावाक्य कि यहां जब बाप के सामने बैठते हो तो ज्ञान स्वरूप होकर बैठ। कि हम किसके सामने बैठे और हम क्यों बैठे, क्यों हम रोज आकर बैठते, ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट। अगर ये मुझे स्पष्टता है कि हम भगवान के सामने आकर रोज बैठते हैं, कोई गुरु के आगे नहीं, कोई ब्रह्मा कुमारी के आगे नहीं, कोई देहधारी के आगे नहीं, लेकिन हम स्वयं भगवान के आगे आके बैठते हैं, अगर मुझे ये स्मृति है तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर डिसिप्लिन आएगी कि मुझे किस नियम से, किस मर्यादा से, किस विधि से, किस शिस्त के साथ बाबा के सामने आकर बैठना है। हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम कोई सत्संग में आकर नहीं बैठे हैं, कोई कथा में आकर नहीं बैठे हैं, जो आधी नींद करते रहे, उधर इधर देखते रहे, समझे ना समझे, आधे में आए, अंत में आके बैठ गए। नहीं, जिनको ये समझ है कि हम रोज भगवान के सामने जाकर बैठते हैं और क्यों बैठते हैं, एक लक्ष्य के साथ हम बाबा के पास जाते हैं कि हमें भी बाबा जैसा ऊंचा बनना है, हमें भी भगवान जैसा भगवान भगवती बनना है। तो हम क्यों रोज आकर बैठते और हम रोज किसके आगे आकर बैठते हैं? ज्ञान पूर्वक अगर हमने ये दोनों बातें समझी हैं, तो हम बाबा के ज्ञान मार्ग में एक गॉडली स्टूडेंट के रूप से चलेंगे, न कि भक्त बन के चलेंगे। कई बाबा के बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन एक गॉडली स्टूडेंट की तरह नहीं, एक भगत की तरह। भाई गए न गए, हफ्ते में एक बार गए, हर गुरुवार को गए, केवल सार जाके पढ़ के आ गए, केवल 5 मिनट कमरे में बैठ के आ गए, ये है सिर्फ भावना से चल। लेकिन समझ पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक निश्चय होता है, एक स्पष्टता होती है, उमंग और लगन होती है। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे अंदर क्वालिफिकेशन आते जाएंगे, अच्छे अच्छे गुण और मैनर्स धारण होते जाएंगे। तो ये हमें चेक करना है, वरना भक्ति में भी तो हम रोज मंदिर जाते ही थे ना, भक्ति में भी हम रोज मंदिर जाते थे, अब हम रोज सेंटर में जाते हैं, पर कोई अंतर है हमारे में? ये हमें चेक करना कि भक्ति में भी हम रोज मंदिर जाते थे, रोज भगवान को याद करते थे, लेकिन हमारा रोज मंदिर जाना, भक्ति में रोज भगवान को याद करना, आत्मा को विकारों से मुक्त करना नहीं होता था। हमारे अंदर भगवान के वो गुण नहीं आते थे। रोज मंदिर जाते हुए, रोज भगवान को याद करते हुए भी वही विकार हमारे में थे। वही अवगुण हमारे में थे। तो अब अगर हम रोज सेंटर में आते हैं, रोज भगवान से योग लगाते हैं, लेकिन अगर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मेरे संस्कारों में कोई सुधार नहीं है, मेरे चलन में कोई दिव्यता नहीं आ रही है, तो कोई फर्क नहीं है, मैं अभी भी भगत की तरह ही चल रही, अभी भी मैं सिर्फ भावना से चल रही हूँ, समझ पूर्वक और लक्ष्य पूर्वक नहीं चल। जैसे लौकिक परिवार में भक्ति में जब माताएं भाई रोज मंदिर जाते हैं, रोज कथा सुनते हैं, रोज आरती भजन गाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो घर वाले कहते हैं ना कि भाई क्या फायदा है, आप रोज मंदिर जाते हैं लेकिन रोज आप गुस्सा करते हैं, रोज तेरी मेरी करते हैं, रोज आप पर चिंतन करते हैं, आप में कोई सुधार तो आ ही नहीं रहा। कहीं ऐसा सर्टिफिकेट अभी भी घर वाले ऐसा तो नहीं देते? हाँ, हर एक अपने आप में चेक कर कि अगर हमारे घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे बच्चे बहू अगर हमारे लिए ये सर्टिफिकेट देते हैं कि ये हमारी, और कई बारी तो सेंटर में आके बहनों को भी वो कहते हैं कि बहन जी हमारी माता जी रोज सेंटर में आती है, रोज योग लगाने तो बैठ जाती है लेकिन उसके स्वभाव में कोई सुधार नहीं, वो हमें अभी भी दुख देते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, हमारे साथ लड़ते हैं, रोज अभी भी तेरी मेरी करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सेंटर में आके भी तेरी मेरी करते रहते, हमने परिवर्तन सिर्फ इतना किया कि हम मंदिर जाते थे उसके बजाय सेंटर में आते हैं, पहले भजन आरती गाते थे अब योग करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में, हमारी आदतों में, हमारे बोलने चलने में कोई दिव्यता नहीं आ रही है, तो हमें समझना चाहिए कि अभी भी हम ज्ञान को यथार्थ रूप से समझे नहीं है। ज्ञान तो सत्य है, पढ़ाने वाला तो सत्य है, इसलिए वो बात नहीं है कि भाई असर क्यों नहीं हो रहा है ना, जैसे भाई दवाई ठीक से लग रही है उसकी निशानी ये है कि बीमारी खत्म होनी चाहिए। अब बीमारी दूर नहीं हो रही है तो कई बार आप सोचेंगे कि डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, दवाई ठीक नहीं दी है, पर यहाँ तो डॉक्टर ठीक है ना, यहाँ तो हमारा टीचर गुरु गाइड सत्य है ना, इसलिए हमारा गाइड सत्य है, गुरु सत्य है, ज्ञान भी सत्य मिल रहा है, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम दवाई किस विधि से लेना चाहिए वो हम नहीं जानते हैं, या तो हमारी कोई परहेज में कमी है। तो ये सिर्फ बाबा को मानने का मार्ग नहीं है, बाबा को यथार्थ रूप से जानने का, पहचानने का मार्ग, और यथार्थ रूप से पहचानना माना स्वयं का परिवर्तन हो जाना। इसलिए ज्ञान मार्ग में भगत बन के नहीं चलना। बाबा कहते हैं एक है मेरे भगत क्वालिटी बच्चे और एक है मेरे वारस क्वालिटी बच्चे। भगत क्वालिटी बच्चे माना सिर्फ भावना से चलने वाले, समझ पूर्वक चलने वाले नहीं। कई नई नई माताएं तो ऐसा करती है कि रोज शिव बाबा की मुरली भी सुनेगी और क्लास करके रोज मंदिर में जाके शिव जी पर लोटी भी चढ़ाएगी कि भाई हम तो भगवान शिव को भी खुश करते हैं और शिव बाबा को भी खुश करते हैं। लेकिन जो ज्ञान समझेगा उसकी भक्ति ऑटोमेटिक छूट जाएगी, उसको कहना नहीं पड़ेगा। ज्ञान समझने का अर्थ ही है
भक्ति समाप्त हो जाए, उसे निश्चय हो जाना कि स्वयं भगवान हमें मिले हैं। हमें याद है शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आए, आजकल तो लोग एक दो के जीवन में इतना माथा नहीं मारते, आधुनिक हो गए, लेकिन पहले तो अड़ोस पड़ोस रहने वाले भी एक दो के जीवन से कंसर्न रखते, एक दो के जीवन के लिए सोचते थे। तो जब हम ज्ञान में आए, आते ही पापा ने भक्ति छोड़ दी और कोई कारण से पापा सख्त बीमार हो गए, एकदम सीरियस। तो सब लोग कहने लगे कि ये भक्ति आपने छोड़ी ना, इसलिए बीमार हो गए। कई बार ज्ञान में आने के बाद कोई नुकसान हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो लोग कहने लगते हैं कि आपने भक्ति छोड़ी ना, इसलिए ये हुआ। पर अगर हम सच्चे और पक्के ज्ञानी हैं, तो हमारा निश्चय हिलेगा नहीं। कई बाबा के कच्चे बच्चे हिल जाते हैं और थोड़ी थोड़ी फिर भक्ति में मानने लगते हैं। कहीं कुछ मान्यता रख के आएंगे, कहीं कुछ व्रत रख के आएंगे, क्योंकि अंदर से हिल जाते। लेकिन अगर हमें बाबा में निश्चय है, तो आज लाखों भाई बहनों का अनुभव है कि कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए या बीमारी आ जाए, लेकिन अगर हम श्रीमत पर है तो बाबा जवाबदार है, बाबा ही हमारा कल्याण करता है और सभी विघ्न मिट जाते हैं। इसलिए हम केवल भगत क्वालिटी बनकर नहीं चले, समझदार सेंसिबल बनकर हम ज्ञान, और जब ज्ञान स्वरूप बनकर हम चलेंगे, तो दूसरी निशानी आप अपने में ये देखेंगे कि हम अपनी शक्ति से चलेंगे, हम अपने उमंग उत्साह से चलेंगे, हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं रहेगी, टीचर बहनों को ज्यादा हमारे पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बेंजी आप क्यों नहीं क्लास में आए, बेंजी आप रोज आइए, माता जी आपको क्या हो गया, हमें इस प्रकार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना धक्के गाड़ी नहीं होगी, हाँ कईयों को धक्का मारना पड़ता है बार बार, तब हमारा पुरुषार्थ ठीक चलता है, फिर हम ढीले हो जाते, फिर बहने हमारे में पावर भरती है, फिर हम चलते। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा अपनी शक्ति से ज्ञान में चल, उसे ज्यादा पालना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर टीचर बहनों को ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वे अपने ही उमंग उत्साह निश्चय और नशे से वो चलते रहेंगे, और उसके सामने कितनी भी बातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, वो रुकेंगे नहीं, ढीले नहीं होंगे, लेकिन अपनी लगन ज्ञान और योग बल से वे अपने विघ्नों को पार करते हुए चलते रहें। तो ये हम अपने में चेक करते जाए कि हम ज्ञान स्वरूप बन के चल रहे हैं, हमें ये पक्का हो कि हम ज्ञान में चलते हैं, हम धारणा में चलते हैं, हम रोज सेंटर में आते हैं, वो हम अपने कल्याण के लिए आते, कोई शिव बाबा पर उपकार नहीं करते हैं, निमित बहनों पर हम उपकार नहीं करते हैं, हम अपने लिए आते हैं। इसलिए मुझे खुद लगन रहे, मुझे खुद जागृति रहे, मुझे क्यों कहने की आवश्यकता हो कि आप रोज मुरली पढ़ो, है ना। तो ये है ज्ञान स्वरूप बन के चलना। तीसरी बात कि अगर हमारे में ज्ञान के राज स्पष्ट हैं, तो हम कभी अलबेले नहीं होंगे, क्योंकि हमें दो बात स्पष्ट होंगी कि खुद भगवान हमें कह रहे हैं, औरों के समझाने की क्या जरूरत है, खुद भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, और दूसरी बात कि अब समय समाप्त हो रहा है। आज भी मुरली में दोनों महावाक्य साथ साथ थे कि बाबा आए हैं, और हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, तुरंत बाबा ने कहा कि महाभारत महाभारी महाभारत विनाश भी सामने खड़ा, माना समय का सिग्नल और भगवान का आदेश, ये दोनों बातें मेरी बुद्धि में होंगी तो मुझे अलबेलापन नहीं आएगा, मुझे आलस नहीं आएगा, मुझे अपना तन मन धन मन वचन कर्म कैसे बाबा के कार्य में सफल करना है वो मैं स्वयं समझ जाऊं। और इसलिए जो ज्ञान स्वरूप बाबा के बच्चे हैं, वे खुद ही समझते हैं कि अब मेरा तन मन धन पर बाबा का भी अधिकार, बाबा भी मेरा हिस्सेदार, मेरे पास जो कुछ धन है साधन है तन की शक्ति है बुद्धि की शक्ति है, अगर मेरे घर के 5 सभ्य उनके हिस्सेदार है तो बाबा भी उसका हिस्सेदार। इसलिए अगर मैं नियमित रूप से मेरे 5 हिस्सेदार के लिए खर्च करती हूँ तो मुझे नियमित रूप से बाबा के लिए भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि भावना से हम करें कि भाई मेरा बेटा पास हुआ है तो चलो मैं भोग लगा देती हूँ, मेरे घर में धंधे में अच्छी मदद मिली है तो चलो मैं इस बार भोग लगा देती हूँ। नहीं, हमें नफा हो या नुकसान हो, हम पास हो या न पास हो, बीमार पड़े या ठीक रहे, मुझे अपना धन बाबा के कार्य में लगाना ही है। तो ये है ज्ञान कि मुझे कहीं भी तन मन धन वेस्ट नहीं करना है, बाबा के कार्य में सफल कर। और जैसे जैसे ज्ञान हम समझते जाते हैं हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती, हमें सद्विवेक मिलता है, हमारी परख शक्ति यथार्थ बनती है, सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें स्वयं ही स्पष्ट है। हम बार बार दौड़ेंगे नहीं, दीदी मैं क्या करूं, रोज आके रोते रहते हैं हम, टाइम लेते रहते हैं ना बहनों, लेकिन हमें स्वयं क्लियर होगा कि नहीं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा की एक मुरली में एक बार आया था, बाबा जो हमें नियम मर्यादाएं सिखाते हैं, चाहे वो आहार शुद्धि है ब्रह्मचर्य है व्यसन फैशन नहीं करना है पिक्चर होटल में नहीं घूमना है, ये जो भी हमारे नियम है हम स्वयं ही उसमें चलें। तो बाबा ने मुरली में एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे ने आज बाबा को पूछा है कि बाबा मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मित्र संबंधी मुझे बहुत आग्रह करते हैं कि तुम खा लो, तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं, बाबा मैं क्या करूं, तो बताओ बाबा ने क्या जवाब दिया होगा। हाँ माताएं बताओ बाबा ने क्या जवाब दिया होगा। बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वही तो रोज मुरली में समझाता हूँ, रोज कौन सा भाषण करता हूँ, रोज जो 1 घंटा तुम बच्चों के आगे मुरली चलाता हूँ उसमें मैं क्या समझाता हूँ, यही तो समझाता हूँ ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चा पूछ रहा है कि बाबा मैं क्या करूँ, खा लूँ शादी कर लूँ, तो बाबा कहता है कि जरूर अंदर इच्छा है तब तो पूछ रहा है, अंदर इच्छा है तब तो पूछते हैं, वरना बाबा ने तो स्पष्ट कहा ही है कि नहीं खाना है, बस पूछने की क्या बात है। तो जो नियमित मुरली सुनते हैं हर महावाक्य को समझते हैं खुद भी विवेक से सोचते हैं उनको ज्ञान इतना स्पष्ट होगा कि उसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं। बाबा ने ये भी मुरली में कहा है कि बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है, बाबा स्वयं ही कल्प पहले मुआफिक जो बातें समझानी है वो खुद ही समझाते, और ये सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा की रोज की मुरली को हम सामान्य बना देते हैं, इतना अटेंशन से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमें स्पष्टता नहीं होती, वरना मुरली ही सब कुछ है। और फिर भी बाबा ने इतनी निमित बहनों को रखा है जो हमें अपने आप गाइडेंस देते रहते हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य से चले, लक्ष्य से चलना उसको कहेंगे ज्ञान स्वरूप होकर चल। और जैसे जैसे ज्ञान की गहराई आएगी, अब है तीसरी स्टेज कि हमें अंदर से वैराग्य आएगा, हमें दिल से वैराग्य आएगा, जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे। जब तक दिल से वैराग्य नहीं है, कोई कितना भी कहेगा ना, हम परमानेंट कर नहीं सके। कोई कहेगा तो थोड़े समय के लिए करेंगे, लेकिन परमानेंट वो चीज धारण नहीं है, और हमें मेहनत लगे। क्योंकि जो चीज आपको दिल से वैराग्य नहीं है वो सहज छोड़ नहीं सकेगी। तो अभी भी संगम के अंत पर हम पहुंचे हैं, अभी भी अगर कोई संस्कार के लिए हम समझते हैं कि मैं अभी भी नहीं छोड़ पाई हूं, इसका अर्थ ये है कि मुझे दिल से वैराग्य नहीं है, मैं छोड़ना चाहती नहीं। वरना जिस बात को आप छोड़ना चाहे वो आप में रहेगी क्यों? तो वैराग्य किससे वैराग्य, जो असत्य है, जो अयथार्थ है, जो असार है, जो अयोग्य है, उससे वैराग्य। और वैराग्य ज्ञान से आएगा, दुख से नहीं आएगा। आप जिस व्यक्ति से दुखी होंगे, थोड़े समय के लिए आप न्यारे होंगे, लेकिन जैसे ही वो अच्छा व्यवहार करेगा फिर आप उससे अटैच हो जाएंगे। यही कारण है गृहस्थी लड़ते भी रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं और छोड़ते भी नहीं, क्योंकि वैराग्य नहीं है ना, ज्ञान नहीं। अगर हमें ज्ञान है तो अंतर से वैराग्य है कि अब ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, अब मैं भगवान की बनी हूं, सत्य ज्ञान मुझे मिला है, इस पवित्र विद्यालय के साथ मैं जुड़ी हूं, अब मेरे अंदर ये विकार नहीं होने चाहिए, मुझे दिल से वैराग्य है। वैराग्य नहीं है इसलिए त्याग मुश्किल लगता है, वैराग्य नहीं है इसलिए छोड़े हुए विकार फिर आ जाते, क्योंकि हमने समझा नहीं। तो ज्ञान से वैराग्य आता है, दुख से वैराग्य नहीं आएगा। दुखी तो हम द्वापर से थे, क्यों नहीं छोड़ते थे? अब समझ मिली है और वो हमने गहराई से समझा है, तो हमें अंदर से वैराग्य आएगा कि अब एक बाबा में मगन होना है। बल हम निमित्त सबसे निभाते हैं, व्यवहार करते हैं। आज हम भी समर्पित होकर सभी भाई बहनों से निभा के चल रहे हैं ना, तो आप अपने लौकिक में निभा के चलें, इसमें क्या बात है, वो भी एक निमित्त रोल है। अलौकिक जीवन में भी तो सबसे निभाना है, तो सबसे निभाना गलत नहीं है, वो नहीं छोड़ना है, लेकिन अंदर से गलत संस्कारों को मुझे बदलना। वैराग्य मुझे अपनी कमजोरी से,
मुझे अपने अवगुणों से, और तब त्याग सहज होगा। फिर आप सहज त्याग कर सकेंगे, चाहे गलत आदतों का, गलत संस्कारों का, देह और देह संबंध को, दैहिक धर्म माना दैहिक विकारी वृत्तियों को, आदतों को हम सहज छोड़ सकेंगे, और तब हमारी तपस्या पावरफुल बनेगी। तब तक नहीं बनेगी, तब हमारा योग शक्तिशाली बनेगा। वरना क्यों हम पवित्र है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, डायरेक्ट भगवान से योग लगाते हैं, क्यों हमारे चेहरे पर तेज नहीं है, क्यों वो शक्ति नहीं है? इसका कारण ये है। फिर हमारी तपस्या कितनी शक्तिशाली बन जाती, तपस्या तेज बनेगी, माना पावरफुल भी बनेगी और लाइट भी आएगी चेहरे, जो बाबा चाहते हैं ना कि गृहस्थ में रहने वाले महामंडलेश्वरों को झुकाएं। काम दिया है ना बाबा ने सीजन में, तो शब्दों से थोड़ी झुकेगी हमारी धारणा, हमारी दिव्य स्थिति, बाबा की याद का वो नशा, और प्रैक्टिकल हमारे जीवन में वो बैलेंस दिखाई दे, तब वो प्रभाव पड़ता। इसलिए हम तो तीसरे स्टेप पर है ना, गीता में कहा है ना, भक्त आत्मा से ज्ञानी आत्मा और ज्ञानी आत्मा से योगी आत्मा मुझे अति प्रिय है। हम वो अति प्रिय योगी आत्माएं हैं जिसके अंतर में वैराग्य है, प्रैक्टिकल व्यवहार में है, मन में एक बाबा है, अनेकों की सेवा है, यही तो हम लोगों की विशेषता है। ओम शांति।